SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आज ओडिशा को 24 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। राज्य में बीजू जनता दल की हार के बाद नवीन पटनायक के 24 साल के शासन का अंत हो चुका है। भाजपा की जीत के बाद मोहन चरण मांझी को विधायकों ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। आदिवासी समुदाय से आने वाले मांझी के नाम पर मंगलवार को हुई विधायकों की बैठक में सहमति बन गई। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की।
मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परीडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए, तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है।
आज भुवनेश्वर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आज ही आंध्र प्रदेश में भी नई सरकार का गठन होने जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यहां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में एनडीए में शामिल जनसेना पार्टी और भाजपा भी शामिल होगी। जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में आयोजित हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले हैं। इधर केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया है। सभी अहम मंत्रालय भाजपा ने इस बार भी अपने पास रखा है। वित्त, गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को झुंझुना पकड़ा दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं,
जो विभाग मिला है एक अहम विभाग है, रोजगार सृजन उसमें होता है, रोजगार देने की बात है, उद्यमी तैयार करने की बात है, तो गया ही नहीं पूरे बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात है। और हम समझते हैं जीतन राम मांझी काम के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी को विभाग मिला है और उसमें जस्टिफाई कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने उन पर जो भरोसा जताया है, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू को सलाह देते हुए कहा है कि इन दलों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है।
तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रा बाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू की मेहरबानी रहेगी तब तक ये सत्ता पे बैठेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन जीत का अंतर पिछली दो बार के मुकाबले इस बार कम हो गया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी चुनाव हार जाते। मंगलवार को रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी की जनता ने संविधान बचाने का काम किया है।
2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया।
अयोध्या में भाजपा की हार से समर्थकों में झल्लाहट है। सोशल मीडिया में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के वोटरों को अपशब्द कहे जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा को घेरा है। चुनाव परिणाम आने के बाद आरएसएस ने भी भाजपा पर कटाक्ष किया है। मणिपुर की अशांति और पार्टी नेताओं में आए अहंकार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा को नसीहत दी है। हालांकि यह नसीहत अपरोक्ष रूप से दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के विरुद्ध जिस तरह से चुनावी कैंपेन चलाया था, उससे आरएसएस में नाराजगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाषा की मर्यादा कई बार तोड़ी। इसको लेकर आरएसएस ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि आरएसएस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया है। मंत्रिमंडल बंटवारे में अहम मंत्रालय पाने से चूकी तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास चाहती है। भाजपा भी अध्यक्ष पद अपने पास ही रखना चाहती है। भाजपा ने डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे बढ़ाया है। पुरंदेश्वरी के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी सहमत हो सकती है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। और चलते चलते बात प्रचंड गर्मी से राहत बनकर आए मानसून की। मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले गुजरात पहुंचकर राहत की बारिश की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जल्द ही मानसून सक्रिय होने वाला है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन ही जम्मू में रियासी इलाके में श्रद्धालुओं के एक बस पर हमला बोला गया। इसके बाद जम्मू क्षेत्र के कठुआ पर आतंकी हमला हुआ। डोडा में सेना के बेस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। यहाँ एक जवान के शहीद होने की सूचना है। इस समय सेना पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर चुकी है और आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.